लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग मानवीय रिश्तों की जगह न ले, व्यक्ति की गरिमा का सम्मान करे तथा हमें अपने समय के संकटों का सामना करने में मदद प्रदान करे। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, हम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत पवित्र हृदय पर संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र दिल एक्सित नोस, अर्थात उसने हमें प्रेम किया है की चर्चा सुन रहे हैं। श्रोताओ, हमने दिल एक्सित नोस के चौथे अध्याय की शुरुआत की है, जिसका शीर्षक है एक प्रेम जो हमें अपने को पे स्वरूप देता है। इसकी शुरुआत करते हुए संत पापा फ्रांसिस कहते हैं कि हम पुनः धर्म ग्रंथ प्रेरणा से लिखी गई पुस्तक की ओर लौटें, जहां हमारा मिलन प्रकाशना में ईश्वर से होता है। वहां कलिसिया की एक सजीव परंपरा में हम सुनते हैं कि इतिहास में ईश्वर ने हमें क्या बतलाने की चाह रखी। नए विधान और पुराने विधानों के विभिन्न पदों में हमें ईश्वर के वचनों में प्रकाशना प्राप्त होती है, जिसके द्वारा विश्वासियों को आध्यात्मिक यात्रा करने में मदद मिलती है। श्रोताओं, हमने अपने विगत प्रसारण के अंतिम भाग में इस बात की चर्चा की कि धर्म ग्रंथ बाइबल में लोग मरुभूमि की यात्रा करते हुए स्वतंत्रता की चाह रखते हैं। उन्हें जीवन जल बहुतायत में एक प्रतिज्ञा स्वरूप प्राप्त होता है, तुम आनंदित होकर मुक्ति के स्रोत से जल भरोगे, मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़कूंगा और तुम पवित्र हो जाओगे, मैं तुम लोगों को तुम्हारी सारी अपवित्रता से और तुम्हारी सब देव मूर्तियों के दूषण से शुद्ध कर दूंगा, मैं तुम्हें एक नया आत्मा प्रदान करूंगा। यह जल ईश प्रजा को जीवन की पूर्णता प्रदान करती एक उस झरने की भांति जो मंदिर से प्रवाहित होते हुए अपने साथ जीवन और मुक्ति की कृपा लेकर आती है। मुझे जल धारा के दोनों तटों पर बहुत से पेड़ दिखाई पड़े। यह नदी जहां कहीं गुजरती है वहां पृथ्वी पर विचरण करने वाले प्राणियों को जीवन प्रदान करती है। वहां बहुत सी मछलियां पाई जाएंगी, क्योंकि यह धारा समुद्र का पानी मीठा कर देती है और जहां कहीं भी पहुंचती है जीवन प्रदान करती है। श्रोताओं, वह जो छेदित है वहां से बहता हुआ एक झरना करुणा और निवेदन प्रार्थना की एक धारा को हम पाते हैं, जिसे प्रथम ख्रिस्तियों ने अपने लिए आवश्यक रूप से अनुभव किया, जहां से यीशु के बेधित हृदय से नया जीवन फूटकर निकलता है। हम संत योहन के सुसमाचार में इन बातों की परिपूर्णता पर विचार करते हैं। यीशु के घायल बगल से आत्मा का जल उमड़कर निकलता है। एक सिपाही ने भाले से उसकी बगल को बेधित किया और उसमें से तुरंत लोहू और पानी बह निकला। सुसमाचार लेखक तब यरूशलेम में की गई उस भविष्यवाणी को याद करते हैं, जहां यरूशलेम में एक जलधारा का फूटकर निकलने और एक छेदे हुए व्यक्ति के बारे में कहा गया था। यीशु का बेधित बगल हमारे लिए खुला झरना है। श्रोताओ, इसके पहले संत योहन के सुसमाचार में हम इस घटना की चर्चा सुनते हैं, जब पर्व के अंतिम दिन यीशु उत्साह मनाने वालों की भीड़ को पुकार कर कहते हैं, जो कोई प्यासा है वह मेरे पास आए और पिए, उसके अंतःस्थल से संजीवल जल की नदियां बह निकलेंगी। इसकी पूर्णता हेतु यद्यपि यीशु के समय का आना जरूरी था, क्योंकि वे अब तक महिमान्वित नहीं हुए थे, उनकी वह पूर्णता हमारे लिए क्रूस पर आने वाली थी। उसके रक्त और लोहू में जो यीशु ख्रिस्त की बगल से प्रवाहित होने वाला था। श्रोताओं, प्रकाशना ग्रंथ की पुस्तिका छेदित होने की भविष्यवाणी और जल स्रोत के बारे में कहती है, हर आंख उसकी ओर देखेगा, यहां तक वे भी जिन्होंने उसे बेधित किया है। हर कोई जो प्यासा है वह आए, जो चाहता है वह मुफ्त में संजीवन जल ग्रहण करे। यीशु का बेधित बगल हमारे लिए प्रेम का उद्गम स्थल है, जिसे ईश्वर ने अपने लोगों के लिए अनगिनत रूप में प्रकट किया है। आइए हम उनके कुछ शब्दों को याद करें। नबी इसायस के 43वें अध्याय के पद 4 में हम सुनते हैं, तुम मेरी निगाहों में मूल्यवान और आदरणीय हो, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। पुनः इसायस नबी के ग्रंथ में 49वां अध्याय का पद 15-16 हमें कहता है, क्या कोई माता अपने दूध मुहे बच्चे को भुला सकती है, या क्या वह अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के प्रति प्रेम के भाव नहीं रखेगी। यदि वे उसे भूल भी जाएं, फिर भी मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। देखो, मैंने तुम्हारा नाम अपनी हथेली में अंकित किया है। वहीं इसायस नबी के 54वें अध्याय का पद 10 कहता है, चाहे पहाड़ टल जाए और पहाड़ियां डावाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा और तेरे लिए मेरा शांति विधान नहीं डावाडोल होगा। नबी सफनिया के ग्रंथ अध्याय 3 के पद 17 में हम पाते हैं, मैं अनंत काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूँ, इसलिए मेरी कृपा दृष्टि निरंतर तुम पर बनी रही। प्रभु तेरा ईश्वर तेरे बीच है, वह विजयी योद्धा है, वह तेरे कारण आनंद मनाएगा, वह अपने प्रेम से तुझे नव जीवन प्रदान करेगा। श्रोताओं, नबी होशेया के ग्रंथ अध्याय 11 के पद 8-9 में हम ईश्वर के हृदय के बारे में सुनते हैं, मैं उन्हें दया और प्रेम की बागडोर से टहलाता था, जब उस प्रेम को ठुकराया गया तो प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें कैसे त्याग दूं, मैं तुम्हें कैसे शत्रुओं के हाथों सौंप दूं, मेरा हृदय यह नहीं मानता, मुझमें दया उमड़ आती है, मैं अपना क्रोध भड़कने नहीं दूंगा, मैं फिर एफ्राइम का विनाश नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मनुष्य नहीं ईश्वर हूं, मैं विनाश से घृणा करता हूं। श्रोताओं, यीशु ख्रिस्त का छेदित हृदय पवित्र धर्म ग्रंथ में मौजूद ईश्वर के प्रेम की सभी घोषणाओं को साकार करता है। उस प्रेम में हम सिर्फ शब्दों को नहीं पाते हैं, बल्कि उसके पुत्र की खुली बगल उन लोगों के लिए जीवन का स्रोत है जिन्हें वे प्रेम करते हैं। वह झरना है जो उनके लोगों की प्यास बुझाती है। इस संबंध में संत पापा योहन पॉल द्वितीय ने कहा है, पवित्र हृदय के प्रति भक्ति के आवश्यक तत्व पूरे इतिहास में कलीसिया की आध्यात्मिकता के स्थायी रूप से जुड़े हैं, क्योंकि शुरू से ही कलीसिया ने क्रूस में यीशु के बेधित हृदय की ओर देखा है। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलीसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र दिल एक्सित नोस उसने हमें प्रेम किया की चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
क्रूस उठाया मेरे गुनाह का, कलवारी पर तूने मेरे मसीहा रक्त बहाया, जिस्म से अपने मुझको क्षमा दी, पापों से मेरे मसीहा।
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। वाटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए अपडेट के अनुसार संत पापा फ्रांसिस की स्थिति स्थिर बनी हुई है। उनका रक्त परीक्षण सामान्य है, जबकि हाल ही में छाती के एक्सरे से उनके फेफड़े में सुधार का संकेत मिला है। श्री ब्रूनी ने कहा कि संत पापा अपने डॉक्टरों द्वारा निर्धारित सभी उपचारों को जारी रखे हुए हैं। उनके मोटर कौशल, श्वास और उनके आवाज में सुधार आई है। हाई फ्लो ऑक्सीजन का उपयोग मुख्य रूप से रात में और आवश्यकता अनुसार किया जाता है। संत पापा फ्रांसिस हर सुबह अपने चैपल में सामूहिक प्रार्थना करते हैं और दिन में अपना काम जारी रखते हैं। मंगलवार 1 अप्रैल को इस महीने के लिए प्रार्थना के मतलब को ध्यान में रखते हुए संत पापा फ्रांसिस ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर नई तकनीकों के सही प्रयोग करने के लिए सभी से प्रार्थना की अपील की। संदेश में संत पापा ने लिखा, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि नई तकनीकों का उपयोग मानवीय रिश्तों की जगह न ले ले, इससे व्यक्ति की गरिमा का सम्मान हो और हमें अपने समय के संकटों का सामना करने में मदद मिले। और ख्रिस्तीय खुशी कभी भी अलग थलग नहीं होती, बल्कि हमेशा समावेशी होती है। यह सभी के लिए होती है। यह वह विचार है जिसे संत पापा फ्रांसिस ने इटली की कलीसियाओं की दूसरी धर्म सभा के प्रतिभागियों को संबोधित किया। यह सभा वाटिकन में 31 मार्च से 3 अप्रैल तक चलेगा। आज प्रकाशित इस संदेश में संत पापा फ्रांसिस याद दिलाते हैं कि सच्चा आनंद कोई आसान खुशी नहीं है। यह समस्याओं के आरामदायक समाधानों से उत्पन्न नहीं होता। यह क्रूस से नहीं बचता, बल्कि इस निश्चितता से बहता है कि प्रभु हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। संत पापा ने आश्वासन दिया कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अपने अस्पताल में भर्ती होने के दौरान और अब इस स्वास्थ्य लाभ के समय में ईश्वर की निकटता का अनुभव किया है। ख्रिस्तीय खुशी जीवन की हर परिस्थिति में ईश्वर पर भरोसा है। संत पापा ने एक बार फिर इस बात पर जोर देते हुए कहा कि यह एक उपहार है जो प्रभु से आता है। यह खुशी रोजमर्रा की जिंदगी में और साझा करने में पूरी होती है और इसकी विशेषता व्यापक क्षितिज और एक स्वागत करने वाली शैली है। कलीसिया बहुसंख्यकों या अल्पसंख्यकों से नहीं बना है, बल्कि ईश्वर के विश्वसनीय लोगों से बना है जो वचन और आत्मा द्वारा प्रबुद्ध इतिहास में चलते हैं। इसलिए प्रतिभागियों से आह्वान किया जाता है कि वे खुद को पवित्र आत्मा द्वारा उत्पन्न रचनात्मक सद्भाव द्वारा निर्देशित होने दें और उन प्रस्तावों के लिए मतदान करें जो इटली की कलीसियाओं के भविष्य के लिए संगम हैं। उधर कैथोलिक विश्वविद्यालयों का एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क भेद्यता और स्वास्थ्य सेवा पर एक गोलमेज चर्चा आयोजित कर रहा है, जो एक अंतः विषय सहयोगी परियोजना है, जिसमें 7 अलग अलग संस्थानों के डॉक्टरेट छात्र और सहायक संकाय शामिल हैं। यह बैठक सोमवार 7 अप्रैल को शाम 4:30 बजे से 7 बजे तक रोम के ऑस्ट्रेलियाई कैथोलिक विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित की जाएगी। आभासी बैठकों की एक श्रृंखला के दौरान डॉक्टरेट छात्र अपने संबंधित शोध परियोजनाओं के लेंस के माध्यम से भेद्यता और स्वास्थ्य सेवा के विषय की खोज कर रहे हैं, जो विकासशील देशों में वैक्सीन परीक्षण, चिकित्सक सहायता प्राप्त आत्महत्या, प्रसवपूर्ण आनुवांशिक परीक्षण, संघर्ष क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा पर अंतर्धार्मिक विवाद, पर्यावरण नैतिकता में सीमाएं, मठवासी चिकित्सा का इतिहास, बुजुर्ग आवासीय देखभाल में सामाजिक और पारिस्थितिक न्याय जैसे विषयों को संबोधित करेंगे। उधर कल यानी 2 अप्रैल को वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन संत पापा जॉन पॉल द्वितीय की मृत्यु की 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर वाटिकन में आयोजित विशेष मिसा समारोह की अध्यक्षता करेंगे। संत पापा फ्रांसिस ने उस दिन दिवंगत पोलिश संत पापा के मरणोत्सव में भाग लेने वालों को अपना प्रोत्साहन भेजा है, जिसमें शाम की प्रार्थना सभा भी शामिल है। कल संत पेत्रुस महागिरजाघर में 2:00-3:00 बजे पवित्र मिसा समारोह मनाया जाएगा और उसी शाम 9:00 बजे संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में पोलिश और इतालवी दोनों भाषाओं में प्रार्थना सभा होगी, जिसका नेतृत्व पोलिश धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष महाधर्माध्यक्ष तादेयुस वोल्दा करेंगे। क्राकोव के मेट्रोपॉलिटन के महाधर्माध्यक्ष रहे कार्डिनल स्तानिस्लाव के साथ संत पेत्रुस महागिरजाघर में भी पवित्र मिसा में भाग लेंगे। कार्डिनल स्तानिस्लाव संत पापा जॉन पॉल द्वितीय के लंबे समय तक निजी सचिव थे। कार्डिनल स्तानिस्लाव को संबोधित एक पत्र में संत पापा फ्रांसिस ने लिखा, मैं आशा की भावना के साथ सभी को शांतिपूर्ण जयंती वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और धन्य कुमारी मरियम एवं संत पापा जॉन पॉल द्वितीय की मध्यस्थता का आह्वान करते हुए मैं आपको और 2 अप्रैल के समारोह में भाग लेने वाले सभी लोगों को पूरे दिल से आशीर्वाद देता हूँ। उधर म्यांमार में आए भूकंप से करीब 3,000 लोगों की मौत हुई है। जुंटा नेता मिंग आंग ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। 4,500 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जबकि 441 लापता हैं। म्यांमार में एक सदी से भी अधिक समय से सबसे बड़ा भूकंप, संयुक्त राष्ट्र ने इस दोहरे भूकंप को इस तरह परिभाषित किया है, जिसकी तीव्रता 7.7 और 6.4 मापी गई, जिसका केंद्र मांडले और सांगाइंग शहरों में था, जो 28 मार्च को देश में आया था। आपदा के 4 दिन बाद भी लोग खुदाई कर रहे हैं। कल एक गर्भवती महिला और एक बच्चे सहित 4 लोगों को इमारत के मलबे से जीवित निकाला गया। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, लोगों के जीवित रहने की उम्मीदें धूमिल होती जा रही हैं। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ओवल ऑफिस में प्रेस के समक्ष पुतिन का जिक्र करते हुए कहा, मैं उन्हें एक समझौता करते हुए देखना चाहता हूं, ताकि हम रूसी सैनिकों, यूक्रेनी सैनिकों और अन्य लोगों की हत्या को रोक सकें। उन्होंने कहा, मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि वह अपना वचन निभाएं और मुझे लगता है कि वह ऐसा करेंगे। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।